शांति सदा बाबा के साथ का हर पल हर घड़ी अनुभव करने वाले अपने निर्माण चित्त के विशेषता के द्वारा सदा सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले बाबा के अनन्य रत्न 1962 से बाबा के ज्ञान को आपने जीवन में धारण किया, मम्मा बाबा के और सभी दादियों की पालना में आप पले, परंतु विशेष आपका सेवा का साथ रहा दादी ब्रिज इंद्रा जी के साथ। दादी के साथ अंग संग रहते, कॉलेज की पढ़ाई करते, सेवाएं देते, आज आप संतोष दीदी जी के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। नितिन भाई की विशेषता यही है, कोई भी काम अगर उनको करना है या कोई भी काम हम देते हैं, 24 घंटे के पहले वो पूरा होना चाहिए। वो कभी भी काम पेंडिंग नहीं रखते। अपने सर्विस लाइफ में भी उन्होंने यही काम किया, इसीलिए बाबा के यज्ञ के प्रति कोई भी सेवा करनी होती थी तो ऑफिस की तरफ से कभी ये न कहा गया किसी बॉस ने कि आपको इस काम के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती। तो समर्पित बुद्धि होते हुए सरेंडर जीवन जीते भी आप सर्विस भी करते रहे और बाबा के यज्ञ की सेवा भी करते रहे, और आज भी आप अपना समय श्वास संकल्प तन मन धन बाबा की सेवा में सफल कर रहे हैं। तो उनके ही अनुभव में कंबाइंड स्थिति के अभ्यास द्वारा हम समर्थ स्थिति कैसे बना सकते हैं वो हम सुनेंगे नितिन भाई जी के से। नितिन भाई जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। वैसे तो बाबा ही है, मगर हमने बाबा को खुदा दोस्त बनाया था, तो बाबा को खुदा दोस्त बनने के कारण मैं बाबा से सहज बात कर सकता। जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, शुरू से मेरी प्रैक्टिस यही रही कि बाबा के साथ जैसे आमने सामने बात करते हैं, ऐसा ही शुरू से रहा है। और इसके कारण जितने भी यज्ञ में हम आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते गए, कर्म बंधन है वो टूटते गए, और आज ऐसी स्थिति है कि अपन निर्बंधन बन गए। क्योंकि जब मैं इस ज्ञान में आया उस समय मैं बांदेला गोप था। आपने बांदेली गोपी तो सुना होगा, मगर जब मैं ज्ञान में आया तो उस समय मैं बांदेला गोप था। तो घर से काफी बंधन थे, मगर उस बंधन को हमने योग बल से काटे, और बाबा को हर चीज बताता था, बाबा अभी ये होगा, बाबा अभी ये हो रहा है। तो बाबा हमको पहले से ही सावधान कर देते थे कि बच्चे ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप शुरू से सावधान हो जाओ। वैसे अनुभव तो बहुत सारे हैं, एक लौकिक घर का अनुभव बताता हूँ, ऑफिस का अनुभव बताता हूँ, वैसे बहुत सारे अनुभव है, मगर थोड़े थोड़े अनुभव बताता हूँ। लौकिक घर में ऐसा था कि 3-4 बरस बीत गए तो भी उन्होंने मेरे ऊपर जो बंधन डाले वो बंधन से मैं उनके अंडर नहीं आ गया, मगर दिन प्रतिदिन बंधन मुक्त होता गया। फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने बताता हूँ कि लौकिक घर में तो ऐसा था ना, अपन कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो माँ को तो मैंने बता दिया था क्योंकि वो यज्ञ सहयोगी थी, मगर घर में पिताजी को और भाइयों को सब चाहिए तो वो माँ को डालना ही पड़ता था। तो जब सेंटर से मैं शिवाजी पार्क आता था, माने 35 मिनट का रन था, तो मैं रोज सेंटर पर 35 मिनट चल के जाता था और 35 मिनट चल के वापस आता था। उसके 35 मिनट के अंदर मैं बाबा से बात करता था। तो सेंटर से आते समय फिर बाबा ने बोल दिया कि आज खाने में कांदा लहसुन डाला है, तुम सावधान रहना। तो बाबा ने हमको टच कर दिया था। तो फिर मैं लौकिक मार्ग को बोलता था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं सिर्फ दही और चावल ही खाने वाला है, आज मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो घर में क्या क्या होने वाला है वो मुझे वो 35 मिनट में बाबा पूरा बता देते थे। और यहाँ तक बताते थे कि आज तुम घर में जाने वाला है ना, तो आज तुमको तुम्हारी धुलाई होने वाली है, वो भी बता देते थे। तो मैं मनसा से हर रीति से तैयार रहता था, क्योंकि घर में सबसे छोटा था। तो और उस समय मेरी आयु थी 17 बरस की। जब मैं ज्ञान में आया तो उस समय मेरी आयु थी 17 बरस की। तो बड़ा जो भाई था ना, वो थोड़ा उसको पसंद नहीं था, बाकी माता पिता का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मगर बड़े भाई का ऑब्जेक्शन था। तो वो बता देते थे बाबा कि आज ऐसा होना, तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहता था, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और आखिर एक दिन ऐसा आया, घर वालों ने बोल दिया कि अगर अभी सेंटर पर जाएगा तो घर में वापस नहीं आना। तो घर में जो कुछ भी होता था ना, मैं ब्रिजेंद्र दादी को बता देता था। तो फिर दादी ने कहा ठीक है, यहाँ ही रह जाओ भाई। दादी ने सब प्रबंध करके दे दिया। दिन बीतते गए और ड्रामानुसार मेरे से जो लौकिक में बड़ा भाई था ना, उसका शादी का समय आ गया। तो अभी घर वाले मुंझ गए कि परिवार वाले आएंगे, मित्र संबंधी, और पूछेंगे कि आपका सबसे छोटा बच्चा किधर गया है। उस समय तो सब पूछते हैं ना। तो फिर उन्होंने घर में फोन करके बताया कि इसको घर में भेजो। दादी ने कहा आपने निकाला है, ये तो खुद नहीं निकला है, आपने निकाला है, अगर आप बोलते हैं तो मैं भेजती हूँ। और दादी ने फिर हमको भेजा भी। और दादी ने कहा कि घर में जाने के बाद दरवाजा पर खड़ा रहना और बोलना, मेरी 3 कंडीशन है, अगर वो मंजूर है तो मैं अंदर आता हूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ से ही वापस जाता हूँ। तो ब्रिजेंद्र दादी ने कैसे युक्ति बता दी और बोला आपके घर में जाके बोलना कि हमारे खाने पीने में कांदा लहसुन नहीं डालने का। दूसरा, मैं जब भी वापस आऊं तो मैं सेंटर पर ही रहेगा, मैं और कहाँ नहीं जाएगा, माना मैं सेंटर छोड़ेगा नहीं, मगर यज्ञ सेवा में सेंटर पर ही मैं रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और तीसरी कंडीशन, जब मैं सर्विस करूं तो धन जो मिले घर का हिस्सा मैं दे दूंगा, बाकी जो हिस्सा बचेगा मैं यज्ञ सेवा में लगाऊंगा, उसमें आप बंधन नहीं डालना। तो उन्होंने कहा हाँ, ये 3 कंडीशन हमको मंजूर है, मगर अभी तुम घर में तो आ जाओ, नहीं तो हम हमारी इज्जत जाएंगे। तो मैंने ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो उस दिन से 8 दिन तक बंधन मुक्त होते गए। तो वो तभी हो सकते हैं बंधन मुक्त, बाबा के साथ कंटिन्यू रूह रिहान चाहिए। तो बाबा के साथ रूह रिहान करने से बाबा सब बातें भी टच करता है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सब बातें बाबा बता देता है। इसलिए बुद्धि योग की जो लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा फिर एक ऑफिस का भी मिसाल बताता हूँ। ऑफिस में मैंने एक सिस्टम डाला था। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं वहां में 10 मिनट योग करता था, और जितने भी अपने स्टाफ वाले हैं तो उन सबको मैं योगदान देता था। और जब ऑफिस छुट्टी थी उस समय भी मैं 10 मिनट योग करता था। और ये वो 10 मिनट को योग ऑफिस के स्टाफ के प्रति योग करता था। तो इसलिए ऑफिस से हमको पूरा सहयोग मिलता था, क्योंकि योग का जो दान किया था उसका रिजल्ट तो आता ही है। तो जाने अनजाने में वो हमारे सहयोगी बन गए थे। इसलिए जब भी मैं ऑफिस में बैठता था ना, तो अपने को तो ना सिगरेट पीते हैं ना कुछ करते हैं, तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता था। मैं ऑफिसर था ना, तो लोग हमको मिलने को आते थे, तो हमारे जो स्टाफ वाले हैं ना, वही हम उनको रोकते थे, आप अगर पान खाते हैं तो सांप के पास नहीं जाना, आपने वो बीड़ी रखा है ना सिगरेट रखा है, सांप को ये चीजें पसंद नहीं है, आप पहले उसको रख के आओ फिर सांप को मिलो। माने हमको कुछ भी ऑफिस में करना नहीं पड़ता था, हमारे जो कलीग है स्टाफ वाले वही अपने आप सेवा करते थे। और ब्रिजेंद्र दादी अगर कभी ऑफिस में फोन करती थी, वो अपने काम से मुझे कुछ बोलना होता था इसलिए फोन करती थी, मगर हमारा जो बॉस था ना वो बोल देता था दादी आप फोन रख दो, मैं वो नितिन भाई को आपको सेंटर पर भेजता हूँ। दादी को दूसरा काम होता था, मगर ऑफिस के बॉस वगैरह इतने सहयोगी, दादी का वो आवाज पहचान लेते थे और दादी को बोलते आप फोन रख दो, मैं नितिन भाई को आपके सेंटर पर भेजता हूँ। तो उस तरह से ऑफिस के बॉस में भी सहयोगी बनते हैं। जब मैं रिटायर हुआ तो जो बड़ा बॉस आया था ना, उसने कहा कि इतना दिन तो मैं आपको सेकंड वगैरह करता था क्योंकि आप मेरे स्टाफ में थे, अभी आप रिटायर हो गए, अभी मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आप मेरे से ऊपर हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको सेकंड करने भी लायक नहीं है, आपकी इतनी ऊंची स्टेज है। तो ऑफिस वाले भी इतने सहयोगी बनते थे। और यहाँ तक हुआ, बहनें भी तो ऑफिस में स्टाफ रहती है ना, बहनों को एक्चुअली उन दिनों में उनको रोना आ गया कि अभी आप अगर यहाँ से जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। मैं कहा नहीं, वो तो स्टाफ अपने बॉस बैठे हैं ना, वो तो बॉस बैठना अलग है और आपका बैठना अलग है। तो ऑफिस में तभी सहयोग भी बन सकते हैं जब हम योग का दान करते हैं। तो आप अपने यहाँ सिस्टम बनाने चाहिए, जब भी ऑफिस में या कोई भी लौकिक कार्य शुरू करो तो 10 मिनट योग का दान दो, और जब कार्य पूरा हो गए तो भी योग का दान दो। इससे वो आपके सहयोगी बन जाएंगे, आपके जो बंधन है वो कट हो जाएंगे। अभी आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, तो हर एक के पास मोबाइल तो रहता ही है, तो बाबा का मोबाइल नंबर कौन सा है, कोई बता सकता है बाबा का मोबाइल नंबर कौन सा है, आप बताइए। 0। हमारे मोबाइल नंबर में 10 फिगर है ना, 10 आंकड़े हैं, तो बाबा का नंबर में 1 कैसा होगा, बाबा के भी तो नंबर ज्यादा चाहिए ना। कितना 0? 3 0, मगर आपके तो 10 है, तो बाबा के तो ज्यादा हो गए ना, नहीं? और इधर माताओं में, बहनों में, बाबा का जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर 15 0 है। देखो हमारे 10 तो है ही है, उसके बाद हमको महाराष्ट्र के बाहर जाना है तो 1 0 लगाना पड़ेगा, फिर हमको इंडिया के बाहर जाना है तो और 1 0 लगाना पड़ेगा, फिर हमको साकार सृष्टि के बाहर जाना है तो और 1 0 लगाना पड़ेगा, फिर हमको सूक्ष्म वतन भी क्रॉस करना है उसका 1 0 लगाना पड़ेगा, और परमधाम का एसटीडी कोड 0 है। तो बाबा के मोबाइल के अंदर 15 0 है, अभी वो 15 0 कौन से, क्योंकि बाबा के सानिध्य में रहना है तो ये जो 15 बातें हैं उसमें से अगर कोई भी एक बात मिस है तो बाबा के सानिध्य में आप रह नहीं सकेंगे। तो अभी 15 बातें कौन सी होगी, जो 15 0 कौन से होंगे उसमें से थोड़े तो आप बता देंगे, जैसे कि आत्म अभिमानी होके बैठना है, हमें आत्मा भी बिंदी बाबा भी बिंदी, ये तो 2 तो 0 हो गए, 3 0 कौन सा होगा जी, ड्रामा का नहीं, हमको तो अभी बाबा के साथ कनेक्शन में आना है ना, ड्रामा जब बीती सो ड्रामा को तो हम अभी तो नहीं लाएंगे, ड्रामा को हम बाद में लाएंगे। बाबा को कहाँ याद करना है, बाबा को कहाँ याद करेंगे, परमधाम में। तो 1 0 वो हो गया, दूसरा बाबा को कैसे याद करना है, बाबा को याद करना है अधिकार के रूप में, भगत के रूप में नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं कि हम भगत। तो बाबा के साथ जब भी बातें करो बच्चे के रूप में, अधिकार के रूप में बात करनी है। दूसरा बाबा से साथ जब भी हम योग लगाएंगे तो प्रेम स्वरूप में स्थित होके योग लगाना है। प्रेम स्वरूप में स्थित होके योग लगाएंगे तो योग सहज हो जाएगा, और जिसके साथ प्रेम होता है उसकी याद तो स्वतः ही आती है। और बाबा को कैसे याद करना है? जब भी योग में बैठो कोई न कोई स्वमान लेके बैठना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जो कोई भी स्वमान आपको सहज लगे जिसमें आप स्थित हो सके, जब भी योग में बैठो तो कोई न कोई स्वमान लेके बैठना है। अच्छा, और जब भी योग में बैठो तो बाबा को फरियाद नहीं करो। नहीं, कई लोग कहते हैं साकार में हम आपको मिले नहीं है, मेरे ये कर्म बंधन है। तो कभी भी मिलो तो बाबा के साथ फरियाद नहीं करो, मगर बाबा की याद में बैठना है। जब भी योग में बैठो तो रोग चिंतन नहीं करना है। नहीं, हमारे पास कोई बीमारी होती है तो फिर बाबा को बोलते हैं ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो हम रोग का चिंतन करते रहते हैं। तो रोग का चिंतन भी नहीं करना है। और क्या करना है? अमृत वेले का जो योग है वो कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बाबा के साथ अगर अंग संग रहना है तो अमृत वेले का जो योग है बैटरी को चार्ज करने का वो सरासरी रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मुरली मिस नहीं करनी है। ठीक है, सही बात है। उसके बाद मनन चिंतन करना, मुरली का मनन चिंतन करना। ठीक है, और वो तो पहला आ गया ना, अन्न की जो परहेज है, बाबा ने जो अन्न की परहेज बताई है अन्न की परहेज का पालन करना है। दूसरा, संघ का पालन करना है। हमारे जो संघ रहे बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग रहना चाहिए, नहीं कि कोई देहधारी के साथ। और जी चार्ट लिखने का, और शाम को भी योग करना। देखो इसमें से कोई पॉइंट रह नहीं गई होवे। एक तो मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, बाबा को परम धाम में याद करना है, प्रेम से याद करना है, अधिकार से याद करना है, स्वमान में रित के याद करना है, अमृत वेले का योग, मुरली मिस नहीं करनी है, अन्न की परहेज, संघ की परहेज, पवित्रता की धारणा। पवित्रता की धारणा माना शुभ भावना, शुभ कामना, ब्रह्मचर्य की पालना ये तो है ही है, मगर मेन पॉइंट है शुभ भावना, शुभ कामना, और फरियाद नहीं करना है और रोग चिंतन नहीं करना है। ये है बाबा के मोबाइल के 15 नंबर। इसमें से अगर कोई भी नंबर एक मिस होगा तो बाबा के साथ हमारा जो कनेक्शन रहना चाहिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये कभी भी इसमें से कोई भी बातें, 15 बातें जो बताई उसमें से कभी भी मिस नहीं करो, तो ही बाबा के साथ हम अंग संग रह सकते हैं। और बाबा के संग अंग संग रहने से दिन प्रतिदिन आप जो है वो बंधन मुक्त बंद हो जाएंगे। हमारा योग सही लगता है या नहीं उसकी मेन पहचान है कि दिन प्रतिदिन आप बंधन मुक्त होते जाएंगे। और आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पवित्रता स्वरूप, ये जो आत्मा के मुख्य जो 7 गुण हैं वो हमारे अंदर आते जाएंगे। अभी हम ज्ञान स्वरूप बने या नहीं उसकी पहचान क्या? ज्ञान स्वरूप का मतलब ये तो नहीं सिर्फ आत्मा परमात्मा को जानना, वो जानना तो एक ठीक है ज्ञान स्वरूप कहेंगे, मगर उसके आगे क्या शब्द है? ज्ञान स्वरूप, आत्मा और परमात्मा का परिचय लेना हो तो ज्ञान हो गया, मगर ज्ञान स्वरूप के आगे, ज्ञान के आगे एक शब्द है स्वरूप। तो स्वरूप माना क्या? तो ज्ञान स्वरूप का पहचान क्या? तो हमारे अंदर कौन से दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे जो आप कह सकते हैं कि ये ज्ञान स्वरूप है? कौन से तीन गुण दिखाई देने चाहिए ज्ञान स्वरूप बनेंगे? तो एक तो कॉमन है, जो ज्ञान स्वरूप होगा वो सदैव आत्मविमानी होगा। दूसरा ज्ञान स्वरूप होगा, उसकी दूसरी निशानी क्या? अर्षित मुक्ता। दूसरा जो ज्ञान मुक्त होगा वो गंभीर होगा, जिसको लोग कहते हैं ना मैच्योरिटी। जो ज्ञान स्वरूप होगा कि जिस भी बात का आपको परिचय होवे, समझो कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको ज्ञान है कि अगर ये वायर को मैं टच करेगा तो शॉक लगने का चांस है, तो इलेक्ट्रिक का काम करते समय वो गंभीरता से सीरियस होके काम करेगा ताकि शॉक न लगे। तो जो ज्ञान स्वरूप होगा उसके अंदर गंभीरता का गुण दिखाई पड़ेगा, बचपन दिखाई नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो ज्ञान स्वरूप होगा कभी भी बंधन में फंसेगा नहीं। ज्ञानी तो आत्मा की मुख्य निशानी है, वो कभी भी कोई भी बंधन में फंसेगा नहीं, और जो हमारे कर्म बंधन है उसको वो काटते जाएगा। कर्म बंधन बढ़ाएगा नहीं, मगर कर्म बंधन जो है काटते जाएगा। तभी हम प्रेम स्वरूप बने हैं, उसकी निशानी क्या? वो कैसे मालूम पड़े कि ये प्रेम स्वरूप बना है? इसमें तो एक दैवी गुण तो बहुत सहज दिखाई पड़ता है, जैसे माता का बच्चों के प्रति प्यार होता है, तो माता के अंदर कौन सा गुण आ जाता है? सहनशीलता का गुण आ जाता है। उसको कुछ बच्चे के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो जो भी कार्य करेगी भले वो सहन करती होगी मगर उसको फील नहीं होगा। तो जिसके साथ हमारा प्रेम होगा, हम प्रेम स्वरूप बनेंगे, तो हमारे अंदर सहनशीलता का जो गुण है वो ऑटोमेटिक आता जाएगा। दूसरा गुण कौन सा आएगा? नम्रचित, नम्रता आएगी, ठीक बताया। और तीसरा उसकी वाणी कैसी होगी? उसकी वाणी जो है मधुर वाणी होगी, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप की निशानी है। जो प्रेम स्वरूप होगा वो कभी भी कटु वचन नहीं बोलेगा, उसकी जो वाणी है मधुर वाणी होगी। अच्छा, अभी सुख स्वरूप की क्या पहचान जी? जो सुख स्वरूप होगा उसकी आप इमेज करो, सुख स्वरूप की स्थिति में बैठो, फिर आप बताओ कौन से दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे? अच्छा, और इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा, और जो सुख स्वरूप होगा उसका पहला गुण होगा गुण ग्राहकता। अगर गुण ग्राहकता नहीं रहेगा और वो अवगुण देखता रहेगा तो वो सुख स्वरूप नहीं बन सकता है। अगर वो अवगुण को नोट करेगा तो वो गुण उसके अंदर पहला गुण होगा गुण ग्राहकता, दूसरा होगा शीतलता, उसके अंदर शीतलता का अनुभव होगा, और तीसरा होगा वो धैर्यवत होगा, उसके अंदर धैर्यवत, जैसे वहां गंभीरता है यहां धैर्यवत होगा। अच्छा, शांति स्वरूप, अभी तो सहज है, हमारा तो ओम शांति तो हमारा मंत्र है, तो शांति स्वरूप बना होगा तो पहली निशानी क्या होगी? उसके अंदर कौन सा गुण दिखाई पड़ेगा? उपराम, क्योंकि वो परम धाम को जो शांत स्वरूप होगा, मेरे पिता शांति के सागर, हमारा घर शांति धाम, तो वो एक उपराम स्थिति में होगा। भले साकार सृष्टि में रहेगा मगर उसकी बुद्धि में है बाप और घर सदैव याद रहेगा, तो वो उपराम होगा। दूसरा उसके अंदर कौन सा गुण दिखाई पड़ेगा? शांत स्वरूप माना, अंतर्मुखी, वो सदैव अंतर्मुखी रहेगा, वो अन्य आत्माओं को पर चिंतन वगैरह उसमें नहीं जाएगा, वो अपने अंदर ही देखता रहेगा। और तीसरा गुण, तीसरा गुण शांत स्वरूप का कौन सा होगा? उसको जो भी त्याग करना पड़ेगा वो त्याग को त्याग नहीं समझेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको घर जाना है और बाबा के साथ हमको, बाबा के साथ हमको पवित्र पावन बन के घर जाना है। तो यहाँ की साकार सृष्टि को वो छोड़ते जाएगा, कोई किसी भी चीज के लिए उसको त्याग करना कोई मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उसने साकार सृष्टि को बुद्धि से छोड़ ही दिया है। तो बाकी कोई स्थूल वस्तु को छोड़ने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आनंद स्वरूप की निशानी, अगर ये हमारे अंदर मैं आनंद स्वरूप बनूं, तो उसका कौन से तीन दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे? जो आनंद स्वरूप होगा वो कैसा होगा? अभी जो आप लोगों ने बोला ना हर्षित मुक्ता, वो हर्षित मुक्ता का गुण तो ठीक है, जो आनंद स्वरूप होगा वो सदैव हर्षित मुख रहेगा। दूसरा, वो उदार चित होगा, बाबा का संदेश उसको जो खुशी मिली है, उसको जो आनंद मिला है, वो औरों को भी देने का प्रयत्न करेगा, उदार चित होगा। और तीसरा गुण, रहम दिल होगा, वो अन्य आत्माओं पर रहम करेगा, खुद के ऊपर तो करेगा, पहला रहम तो हमको अपने ऊपर करना है, फिर अन्य आत्माओं को करना है। शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप तो बहुत इजी है, उसकी अवस्था कौन सी होगी शक्ति स्वरूप की? अचल, अडोल और एक रस। जो शक्ति स्वरूप होगा उसकी अवस्था होगी अचल, अडोल और एक रस। और लास्ट में है पवित्रता, अगर हमारे अंदर पवित्रता है तो पवित्रता से कौन से गुण दिखाई पड़ेंगे? एक तो है संतुष्टता, दूसरा है साहस और तीसरी है दृढ़ता। वो जो भी कार्य करेगा दृढ़ता से करेगा। तो अगर हम शक्ति स्वरूप है तो संतुष्ट रहेंगे, साहस हमारे अंदर गुण होगा और दृढ़ता का भी गुण होगा। तो बाबा के संग में रहने से एक तो हम आत्मविमानी बनते जाएंगे और हमारे अंदर ये जो दैवी गुण है वो आते जाएंगे। जिसका मिसाल हम अपना चित्र, हम लक्ष्मी नारायण का चित्र बताते हैं ना, कि लक्ष्मी नारायण हमारा एम क्या है, कर्मातीत बनना, और हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। तभी ये जो लक्ष्मी नारायण है इतने सजे सजाए क्यों है? क्या इनके पास धन संपत्ति ज्यादा है इसलिए? लक्ष्मी नारायण को हम सजे सजाए दिखाते हैं ना, तो सजे सजाए किसका सिंबल है? उन्होंने संगम युग में कौन सा कार्य किया जिसके कारण वो भविष्य में इतने सजे सजाए रहे? जी संपन्न स्थिति है इसलिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, हमको बाबा ने जब हम बीमार पड़ा था तो बीमारी में तो कुछ काम रहता नहीं है ना, सभी बोलते हैं रेस करो रेस करो। तो बीमारी के समय हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में जाते थे, तो बाबा ने हमको एक प्रश्न पूछा था, यही प्रश्न पूछा था कि लक्ष्मी नारायण इतने सजे सजाए क्यों हैं? क्या उनके पास धन संपत्ति इतनी ज्यादा है इसलिए? तो जैसे आप लोगों ने बताया ना, वही बात मैंने बाबा को बताई। तो बाबा ने कहा ये उसका उत्तर नहीं है। तो बाबा ने उसका रहस्य और भी बताया और अलग तरीके से बताया। देखो लक्ष्मी नारायण को हम कानों से सजाते हैं ना, माना कानों में भी वो गहने पड़ते हैं। तो बाबा ने बताया कि अगर तुम रोज मेरी मुरली सुनेंगे तो तुम्हारे कान सजेंगे। तो जितना हम मुख द्वारा अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देंगे तो हमारा जो गला है वो सजेगा। जिसके अंदर जितना हम यज्ञ में कर्मणा सेवा करेंगे तुम्हारा हमारा हाथ सजेगा, जितना हम यज्ञ अन्न की परहेज करेंगे तो हमको दुपट्टा मिलेगा, और जिसके कारण हम धर्म के धक्के खाएंगे तो हमारा पांव सजेगा, और जितने हम सर्विस की जिम्मेदारी उठाएंगे तो फिर हमको रत्न जड़ी ताज मिलेगा। तो बाबा ने कहा अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो ये जो कर्म इंद्रिया है उस हर कर्म इंद्रियों को हमको उसका यज्ञ में स्वाहा करना है। ऐसे से हम रोज मुरली सुनेंगे लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे, मगर हमारी जो भी कर्म इंद्रिया है उसको यज्ञ के अंदर हमको स्वाहा करना है। कानों द्वारा मुरली सुनना है, मुख द्वारा बाबा का परिचय अन्य आत्माओं को देना है, और यज्ञ में कर्मणा सर्विस करनी है, तभी हम लक्ष्मी नारायण जैसे सजे सजाए बन सकते हैं। तो ये हमारा बीमारी के टाइम का भी अनुभव बाबा के साथ रहा, और साकार बाबा को भी हमारा बाबा के साथ मिलना हुआ, तो साकार बाबा का भी आपको एक अनुभव सुना देते हैं। शुरू शुरू में जब पहले पहले ज्ञान में आए थे ना, एकदम 62 की बात है, उस समय बाबा दिन में हम आते थे, जैसे यहाँ दिन में आते हैं वैसे वहाँ दिन में भी आप पहुँचते थे, और शाम को बाबा बच्चों से मिलते थे। अभी जो हिस्ट्री हॉल है ना, हिस्ट्री हॉल के ऊपर टेरेस है, वो टेरेस पर बाबा बच्चों से पिकनिक करते थे, माने बाबा की बच्चों के साथ मुलाकात होती थी। तो जो भी हम बॉम्बे से गए थे सब वहाँ बैठ गए थे, तो बाबा ने ऐसी एक दृष्टि घुमाई और टीचर को पूछा, उस समय हम टीचर को ब्राह्मणी बोलते थे, तो टीचर को पूछा कि एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। तो फिर वो बहन ने हमारे बारे में बताया कि ये माउंट आप ऊपर आते समय उसमें नाक में से खून बहता था, इसलिए अभी वो आराम कर रहा है। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं वो बच्चे को बुलाओ। तो वो फिर बहन आई है और हमको बोला कि बाबा आपको याद करते हैं, आप चलो। तो फिर हम बाबा के पास गया तो बाबा से पूछा बच्चे क्या हुआ था, तो मैंने कहा यक्ष नाक में से खून बह रहा था। तो बाबा ने क्या बोला, अच्छा अच्छा बच्चे ने यज्ञ के अंदर खून दिया है तो बाबा उसका 100 गुना करके देगा अभी, और 100 गुना भी कैसा करेगा। फिर बाबा ने कहा कल सुबह अमृत वेला योग होने के बाद आप मेरे कमरे में आना, माना 4:45 का योग करने के बाद हम बाबा के कमरे में चले गए। बाबा ने बोला था ना, अब तो शुरू में अभी जैसे रिस्ट्रिक्शन है ना, उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, वो पांडव भवन का पुराना पांडव भवन में से हम यीशु के कमरे में से दीदी के कमरे में से ऐसे बाबा के कमरे में चला गया अमृत वेले। फिर बाबा ने वहाँ संतरी दादी जो है वो जो भाऊ है ना उसकी युगल संतरी दादी जिसके तन में बाबा फर्स्ट टाइम आए थे, वो संतरी दादी को बुलाए, संतरी दादी इसके लिए लेके आओ। तो संतरी दादी को बाबा ने प्रोग्राम दे रखा था रात को कि कटोरे में घी डालना, उसके अंदर बादाम माना सूखा मेवा जो भी है, बादाम इलायची काजू वगैरह जितने भी सूखे मेवे हैं वो पीस के वो घी के अंदर डाल देना। तो बाबा ने वो कटोरा बन के तैयार रखा था, बाबा ने कहा देखो बच्चे तुमने यज्ञ में खून दिया है तो बाबा उसका रिटर्न तुमको 100 गुना करके देगा, जितना दिन तुम यज्ञ में इधर रहेगा उतना रोज सुबह आना और बाबा के पास ये घी कटोरा पी के जाना। तो मैं तो अपने उस समय तो अपन बच्चे थे ना, तो अपने को क्या है बाबा ने बोला है तो चले जाते थे बाबा के कमरे में, उस समय घी का कटोरा और सूखा मेवा डाला हुआ सारा बाबा हम बच्चों को हमने पिया था। तो उस समय हमको मालूम है उस समय इतनी एनर्जी आती थी, अनलिमिटेड एनर्जी, और बाबा के साथ पिया हुआ है, बाबा ने दिया हुआ है वो सारा दिन उसकी खुशी रहती थी। तो बाबा कहने का भावार्थ ये है कि यज्ञ सेवा हम जो भी करते हैं उसका बाबा इमीडिएट रिटर्न देता है। इमीडिएट रिटर्न तो खुशी तो मिलती ही मिलती है, मगर शारीरिक शक्ति भी बाबा दे देता है। तो बाबा ने सिर्फ इतना ही बताया कि बच्चे ने अगर यज्ञ में खून दिया है तो बाबा उसका 100 गुना करके रिटर्न करता है। तो बाबा की ये विशेषता जो है आप सभी भी अनुभव करते होंगे, जिन्होंने भी अव्यक्त पालना ली है, साकार में तो ली है, मगर जिन्होंने भी अव्यक्त पालना ले रहे हैं उनको खुद को भी अनुभव होता होगा कि बाबा कैसे बच्चों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप थोड़ा करो, बाबा उसका रिटर्न जो है वो 100 गुना करके देते हैं। और बाबा जानी जानार हार होते हुए भी, मैं जानी जानार हार हूं ऐसा बताते नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में सनसेट पॉइंट पर बाबा ने हमको बोला था, बाबा का संदेश गुजराती में, हिंदी में बाबा ने एक संदेश बनाया था और बाबा ने बोला था इसका गुजराती ट्रांसलेशन करके लेके आओ, अपन सनसेट पॉइंट पर ये बोर्ड लगा देंगे। तो बाबा ने हमको ट्रांसलेशन करने को दिया, तो मैंने हिंदी का गुजराती में ट्रांसलेशन किया और फिर बाबा ने बोला बच्चे अभी पढ़ के सुनाओ। तो मैंने गुजराती में बाबा ने पढ़ के सुनाया, बाबा को पढ़ के सुनाया। देखो बाबा जानी जानन हार है, फिर भी बाबा ने कुछ बोला नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये जो सेंटेंस है ना उसमें कुछ मिस्टेक लगता है, बाबा तो गुजराती जानता नहीं है मगर बाबा को ऐसा लगता है, बच्चे फिर से दोबारा सोचो इसमें कुछ मिस्टेक है क्या। तो हमने फिर दोबारा बाबा ने बोला है तो हमने दोबारा वो सेंटेंस को पढ़ा और फिर हमको लगा कि इसके अंदर व्याकरण का मिस्टेक है। बाबा जानते हुए भी बाबा ने ऐसा बोला नहीं कि बच्चे तुम्हारी मिस्टेक है, बाबा ने ऐसा ही कहा कि बच्चे तुमको गुजराती ज्यादा आता है, बाबा को तो इतना गुजराती आता नहीं है, फिर भी देखो। मगर हम लोगों की आदत किस क्या होती है, कोई भी मिस्टेक करता है तो हम इमीडिएट बोल देते हैं कि आपने ये गलती की है। बाबा कभी भी गलती किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करते थे, बाबा का तरीका यही रहता था बच्चे देखो ऐसा है, बाबा समझता है ये ऐसा होना चाहिए, फिर भी बच्चे आप मालिक है, आप जो बोलेंगे वो बाबा तो मंजूर कर देगा, फिर भी बच्चे आप मालिक है। तो फिर मैंने बाबा को जाके बोला नहीं बाबा इसमें ग्रामर की मिस्टेक है। हाँ कोई बात नहीं बच्चे उसके करेक्ट करो। तो फिर हमने कहा बाबा करेक्ट कर दिया है, अच्छा अच्छा अभी आर्टिस्ट को बुलाओ। और बाबा ने आर्टिस्ट को बुला के बोला बच्चे ये 2 घंटे में लिख के दो। तो वो आर्टिस्ट ने बाबा ने बोला तो लिख के दिया। फिर हमको बाबा ने शाम को हम सभी को वापस बुलाया, बच्चे अभी ये बोर्ड बन गया है, अभी नखिल सनसेट पॉइंट पर जाके लगा के आओ। तो उन दिनों में ऐसा कोई व्हीकल तो था नहीं, उन दिनों में हमारे अपने पास तो बैलगाड़ी थी और हाथ गाड़ी थी, उसमें लेके हम लगा के आए। और बाबा को आके बाद बताया कि बाबा वहाँ बोर्ड कंक्रीट में फिट करके आ गए। तो बाबा फिर बच्चों को गोद में लेके बाबा हर बच्चे को टोली खिलाते थे। तो बाबा की पालना में कितना प्रेम रहता था, और काम थोड़ा भी कार्य करेंगे बाबा उसका 100 गुना रिटर्न करके देते थे। और बाबा जब गोद में लेके टोली खिलाते थे तो थारी सारी थकावटी उस समय मिट जाती थी। तो ये थोड़ा बहुत साकार बाप का अनुभव और ये ऑफिस का, यज्ञ का और लौकिक घर का, ये है अपनी जीवन यात्रा के कुछ क्षण जो आप लोगों को बताएं। बाकी और कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और कोई जानना होगे तो बता सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं तो फिर ऑफिस का और एक अनुभव सुना देते हैं। एक बारी हमको मधुबन पे आने का था और उन दिनों में कंप्यूटर आए हुए थे। तो एक सुबह जो अमृत में जब ऑफिस स्टार्ट हुई तो कंप्यूटर जो है वो मशीन जिसमें हम कार्य करने वाले थे वो मशीन बिगड़ गया था, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट वाले वहां उस कंप्यूटर रूम में जाके आए थे और वो मशीन कंप्यूटर मशीन चलता नहीं था। मगर मुझे कुछ ये मालूम नहीं था कि ये कंप्यूटर बिगड़ गया है। तो मैं अपने आप अपना कार्य लेके वो कंप्यूटर में बैठ गया और कंप्यूटर ऑन किया, जो हमको करना कार्य करना था वो मैंने प्रिंट लिया और प्रिंट लेके वापस अपनी सीट पर आ गया। तो सुबह जो भाई गया था जिसको कंप्यूटर मांगता था, उसने कहा कंप्यूटर तो ऑफ था, आपका कैसा कार्य हो गया? मैं कहा मशीन बिगड़ गया तो मुझे तो नहीं मालूम है, मगर कंप्यूटर तो चालू हो गया। बोलता अभी आप तुम हाथ लगाओ और कंप्यूटर मुझे चालू करके दो, मुझे भी एक अर्जेंट काम है। तो मैंने फिर वापस हाथ लगाया तो चला नहीं। मैं कहा अगर मशीन बिगड़ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोलता नहीं आपके टाइम कैसा चला, फिर मेरे टाइम नहीं चलता है। मैं कहा मुझे नहीं मालूम है वो कैसे चला। तो मैं कहा नहीं वो बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर हमने जो काम किया था ना उसमें एक मिस्टेक निकली। तो मैं कहा अभी ये मिस्टेक तो करेक्ट करनी पड़ेगी। तो वापस वो कंप्यूटर रूम में गया। अभी तो हरेक के टेबल पर कंप्यूटर है, उन दिनों में हरेक के टेबल पर कंप्यूटर नहीं रहते थे, कंप्यूटर का एक सेपरेट रूम रहता था। तो फिर वापस मैं वो कंप्यूटर रूम में गया और वापस मशीन ऑन किया तो ऑन हो गया। जो हमको करेक्शन करनी थी वो करेक्शन भी हो गई और वापस मैंने प्रिंट आउट ले लिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। तो वापस वो भाई आया, देखो तुम्हारा काम करना है तो ये मशीन चलता है, मेरा काम करना है तो ये नहीं चलता है। मैं कहा हमको क्या मालूम, मगर ये बाबा के, हमने बाबा को बोल के रखा था कि बाबा ये काम हमको इतना पूरा करना है, ये इतना मैं कार्य पूरा कर देगा तो ऑफिस से मुझे मधुबन आने की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि मुझे अमुक बिल सबमिट करने थे। तो बॉस ने बोला था इतना बिल सबमिट करो फिर तुम मधुबन जा सकते हो। तो हमने बाबा को अमृत वेले बोल दिया था कि आज ऑफिस में इतना काम करना है, वो हमारा हो जाएगा ना तो मुझे फिर मधुबन आने की छुट्टी मिलेगी। तो बाबा ने अमृत वेले बाबा को बोल दिया था। मैं कह जो भी जब भी मुझे कहाँ भी जाना है तो मैं बाबा को बोल देता हूँ, बाबा आप ये ऐसा करना है, बाबा अभी ऐसा करना है। जैसे नहीं हम आपस में एक दो को बोलते हैं भाई हम कौन सी बस में जाएंगे, कौन सा ट्रेन से जाएंगे या क्या जाएंगे, वो भी मैं बाबा को पूछता हूँ कि बाबा मुझे इस तरफ जाना है तो ट्रेन से जाऊं या बस से जाऊं। माने इतनी जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो भी बाबा के साथ मैं लगातार कंटिन्यू बात करते ही रहता हूं और फिर बाबा जो टच करता है उस अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो कार्य पूरा होने के बाद हमने बॉस को बोला कि ये तो ये प्रिंट आउट हो गया है। बॉस ने कहा ठीक है आप माउंट आबू जाके आओ, बाबा को मिल के आओ। भले वो बाबा जानता नहीं था मगर बोलता था आप बाबा को मिल के आओ, बाबा का उतना परिचय नहीं था मगर ऑफिस में जब हम भी बाबा बाबा बोलता था ना कहाँ जाते थे, मैं क्या बाबा के पास मिलने को जाते थे। तो बोलता अच्छा अच्छा अभी मिल के आ जाओ फिर अपन आगे का काम करेंगे। तो ये तभी हो सकता है जब बाबा के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रहने से। बाबा जो है, बाबा हमेशा कहता है ना तुम्हारी जो भी जिम्मेदारी है, तुम्हारा जो भी बोझ है वो मुझे दे दो, सिर्फ तुम्हारा काम है मेरी याद में रहना। अगर ये नियम का भी पालन करते हैं तो बाबा तो सदैव मदद के लिए तैयार बैठा ही हुआ है। सिर्फ मदद लेना, बाबा को यूज करना वो हमारे हाथ में है। बाबा तो तैयार बैठा ही हुआ है बच्चों को मदद करने के लिए। अच्छा, ओम शांति।